डॉक्टर डेविड इमानुएल, सत्र एक, निर्गमन भजन 136। 2024 डेविड इमानुएल और टेड हिल्डेब्रांट। यह निर्गमन स्तोत्रों पर अपने शिक्षण में डॉक्टर डेविड इमानुएल हैं। यह सत्र संख्या एक, परिचय, भजन 136, एंटीफोनल लिटुर्जी है। नमस्ते, मैं डॉक्टर डेविड इमानुएल हूँ। मैं यहाँ न्याक कॉलेज, इस अद्भुत सेटिंग और एलायंस थियोलॉजिकल सेमिनरी में पढ़ाता हूँ। मेरी पृष्ठभूमि मूल रूप से कंप्यूटर विज्ञान में है, लेकिन कुछ समय बाद मैंने इसे छोड़ दिया और मैं बाइबल का अध्ययन करने आया। मैंने यरूशलेम के हिब्रू विश्वविद्यालय में 11 वर्षों तक अध्ययन किया, जिसे बाइबल कहा जाता है, लेकिन जाहिर तौर पर यह पुराना नियम है। आज मैं आपको उस हिस्से के बारे में बताना शुरू करना चाहता हूँ जिसके लिए मैं हिब्रू विश्वविद्यालय में काफी समय समर्पित करता हूँ। यह भजनों में निर्गमन के मूल भाव को देख रहा है। वह मूलतः मेरी पृष्ठभूमि है, इसलिए मैंने बहुत सारी बाइबल हिब्रू भाषा लिखी है। मैंने बहुत सारी हिब्रू कविता के साथ साथ प्राचीन निकट पूर्व और हिब्रू बाइबल की बुनियादी समझ भी विकसित की है। तो हम मूल रूप से अगले कुछ वीडियो को देखने जा रहे हैं। हम भजनों में निर्गमन के मूल भाव को देखने जा रहे हैं। ऐसा करने के लिए मैं वास्तव में एक्सोडस मोटिफ के बारे में थोड़ी सी बात करके शुरुआत करना चाहता हूँ। यदि मैं आपको उस समय की बात बताऊं जब मैंने अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई शुरू की थी, जब मैंने इसे देखना शुरू किया था, तो मुझे पता था कि मेरा विषय क्या था। मुझे पता था कि मैं एक्सोडस रूपांकन का अध्ययन करने जा रहा हूं, जैसा कि यह स्तोत्र में दिखाई देता है। इसलिए मैंने एक्सोडस रूपांकन को ही देखना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने बाइबल पढ़ी, हिब्रू बाइबल और साथ ही नया नियम, मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचना शुरू कर दिया। इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि शायद संपूर्ण बाइबल में एक्सोडस रूपांकन सबसे प्रभावशाली और सबसे प्रभावशाली परंपरा थी। बाइबल पढ़ते समय मुझे यही अनुभूति होने लगी। जितना अधिक मैंने मूल भाव के बारे में पढ़ा, उतना ही मैंने इसे उत्पत्ति से लेकर कई अलग अलग ग्रंथों में प्रतिबिंबित होते देखा, यहां तक कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी पहचाना जा सकता है। तो मैंने इसे चलते देखा और मैं इतना आश्वस्त हो गया कि यह संपूर्ण बाइबल में सबसे प्रभावशाली परंपरा थी। जब मेरे शोध प्रबंध के परिचय की बात आई, तो मैंने यह कथन यहां लिखा। वैसे ही मैंने इसे खोला। एक्सोडस रूपांकन हिब्रू बाइबल में सबसे प्रमुख रूपांकनों में से एक है। मैंने मूल रूप से यह लिखा था कि मेरी अंग्रेजी आरक्षित होने के कारण मुझे यह कहने में बिल्कुल सहज महसूस नहीं हुआ कि यह सबसे प्रमुख रूपांकन था, हालांकि मैं इस पर पूरी तरह विश्वास करता था। मैंने परिचय का पहला प्रारूप अपने सलाहकार को सौंपा और उन्होंने इसे देखा और उन्होंने इसमें एक सुधार किया। यही वह सुधार था जो उन्होंने किया था। एक्सोडस रूपांकन संपूर्ण बाइबल में सबसे प्रमुख रूपांकन है, सबसे प्रभावशाली में से एक नहीं, बल्कि सबसे प्रमुख रूपांकन है। वही मैंने पाया। इसलिए इसमें कोई वास्तविक आश्चर्य नहीं है कि यह भजन संहिता की पुस्तक में दिखाई देता है। इसलिए इससे पहले कि हम वास्तव में यह देखें कि यह भजनों में कैसे प्रकट होता है, हम सबसे पहले मूल भाव को ही देखेंगे। हम कुछ देखेंगे कि यह किन स्तोत्रों को प्रभावित करता है और फिर हम स्वयं मूल भाव को देखेंगे। फिर हम भजनों, पांच भजनों को देखना शुरू करेंगे जिन्हें मैंने व्याख्यानों के इस विशेष सेट के लिए चुना है। इसलिए भजनों में निर्गमन के संबंध में हमें जो बातें याद रखनी होंगी, उनमें से एक यह है कि यह मूल रूप से एक क्रॉस शैली है, जिसका अर्थ है कि कोई एक विशेष शैली नहीं है। यदि आप मूल रूप से हरमन गंकेल द्वारा परिभाषित शैलियों से परिचित हैं, विलाप, प्रशंसा के गीत, धन्यवाद के भजन, वे सभी, जो मुझे यकीन है कि आपने भजन कक्षा में अन्य वीडियो में सीखा है, लेकिन ऐसी एक भी शैली नहीं थी जिस पर एक्सोडस रूपांकन वास्तव में लागू होता है, लेकिन इसे हम क्रॉस शैली कहते हैं और यह उनमें से पूरी विविधता को प्रभावित करता है। मुझे स्तोत्र के संबंध में यह भी उल्लेख करने की आवश्यकता है कि ऐसे कई स्थान हैं जहां निर्गमन के छोटे छोटे उल्लेख मिलते हैं, जैसे कि स्तोत्र 66, 77, 95 और 114। इन भजनों को इस व्याख्यान श्रृंखला में शामिल नहीं किया जाएगा। कुछ और स्थान भी हैं जिनके बारे में हम भजन 23 जैसे स्थानों के बारे में सोच सकते हैं। एक ऐसा भजन जिसके बारे में बहुत से लोग जानते हैं, जो निर्गमन से जुड़ा हुआ है क्योंकि इसमें नेतृत्व करने का विचार है जो रेगिस्तान काल को प्रतिबिंबित करता है और साथ ही बसता भी है। अंतिम दो छंदों में भजन का अंत जो वादा किए गए देश में बसने का एक विचार या प्रतिबिंब है। अतः इनके अलावा अन्य भजनों में भी निर्गमन परंपरा की गूंज मिलती है, लेकिन इन स्थानों में संभवतः भजन 14 में कम से कम एक या दो हैं। इसमें से बहुत से निर्गमन मूल भाव को संबोधित करते हैं या उससे संबंधित हैं। हमारे अध्ययन के लिए सबसे प्रमुख सामग्री यहां इन भजनों में दिखाई देने वाली है। भजन 7, भजन 78, 105, 106, 135 और 136 वे भजन हैं जिन पर मैं इस व्याख्यान श्रृंखला में ध्यान केंद्रित करने जा रहा हूं। हम प्रत्येक भजन को किस प्रकार अपनाएंगे? ऐसी कई चीजें हैं जो मैं प्रत्येक भजन के लिए प्रदान करना चाहता हूं ताकि हमें इस श्रृंखला को किसी प्रकार की संरचना देने में मदद मिल सके। पहली चीज जो मैं प्रत्येक भजन के लिए प्रदान करना चाहता हूं वह एक रूपरेखा है। इसलिए मैं आपको केवल सामग्री का एक बुनियादी अवलोकन देना चाहता हूं जिसे हम पहले देखने जा रहे हैं। तो आप किसी प्रकार का रोड मैप प्रदान कर सकते हैं ताकि हम देख सकें कि हम क्या देखने जा रहे हैं। दूसरी चीज जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं वह उद्देश्य है। मैं किसी स्तर पर इसे कवर करना चाहता हूं। हमें यह देखना होगा कि भजन वास्तव में क्यों लिखा गया था। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल तभी होता है जब हम समझते हैं कि भजन क्यों लिखा गया था, भजनकार क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा था। यह केवल तभी होता है जब हम इसे समझते हैं, तभी हम समझ सकते हैं कि वह अपनी विशेष रचना में एक्सोडस रूपांकन के कुछ तत्वों का चयन क्यों करता है। हम देखेंगे कि कुछ चीजें हैं यदि वे उसकी संरचना, उसके रूब्रिक में नहीं आती हैं, तो ये चीजें उपेक्षित हो जाएंगी, भले ही हम सोच सकते हैं कि वे वास्तविक रूपांकन में केंद्रीय विषय हैं। फिर हम इस पर गौर करेंगे और यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं बिल्कुल भी उतनी संतुष्टि के साथ नहीं कर पाऊंगा जितना मैं चाहता हूं, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मूल भाषा ज्ञान शामिल होगा। लेकिन फिर भी हम भजन के निर्गमन रूपांकन, विशेष रूप से निर्गमन और संख्याओं की पुस्तक से जुड़े संबंधों को देखेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि अन्य स्थान भी होंगे, तो हम उन पर गौर करेंगे। हम उनमें से कुछ पहलुओं की तुलना भी करेंगे। उल्लेखनीय चूक के प्रश्न पर भी ध्यान दिया जाएगा। वे स्थान हैं जहां प्रमुख तत्व हैं। हम बस एक क्षण में निर्गमन मूल भाव के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक्सोडस मोटिफ के प्रमुख तत्व हैं जो वास्तव में मुझे लगता है कि कम से कम एक्सोडस की किताब में महत्वपूर्ण हैं या संख्याओं की किताब में दिखाई देते हैं, जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है, जिन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है। मैं उनमें से कुछ को उठाना चाहता हूं, उनमें से कुछ को लाना चाहता हूं, और जब हम व्यक्तिगत भजनों से निपटते हैं तो उनमें से कुछ चीजों का उल्लेख करना चाहते हैं। एक अन्य पहलू जिस पर मैं गौर करना चाहता हूं वह भजनों की काव्यात्मकता से संबंधित है। यह एक क्षेत्र है, यह मेरे पालतू जानवरों में से एक है जो मेरे पास है। अक्सर जिन भजनों का हमने उल्लेख किया है विशेष रूप से भजन 105, 106, भजन 78, ये ऐसे भजन हैं जिनकी अतीत में आलोचना की गई है, क्योंकि वे एक कहानी बताते हैं और क्योंकि उनमें एक कथानक और एक कथा है। ये ऐसे भजन हैं जिनकी कम काव्यात्मक होने के कारण आलोचना की गई है। यह वास्तव में वास्तविक भजनों पर एक मनमाना निर्णय है। इसलिए मुझे पता है कि यह कोई कक्षा या व्याख्यानों की श्रृंखला नहीं है जो हिब्रू काव्य शास्त्र पर ध्यान केंद्रित करेगी, बल्कि यह कुछ ऐसा है जो मुझे पसंद है और बहुत पसंद है। इसलिए मैं उन कुछ काव्यात्मक विशेषताओं के बारे में बात करना चाहता हूं जो हमें इन स्तोत्रों में मिलती हैं, विशेष रूप से कुछ सशक्त संरचनाओं के बारे में। इसलिए मैं इन भजनों की कुछ काव्यात्मकता पर गौर करना चाहता हूं। फिर पुन उपयोग, व्याख्या और पुन उपयोग का प्रश्न है। यहां हम उन उदाहरणों को देखना या देखना शुरू करना चाहते हैं जहां निश्चित रूप से लेखक का स्रोत जो प्रतीत होता है वह उसके काम में जो रखा गया है उससे बिल्कुल मेल नहीं खाता है। मैं यह समझने के लिए भजन और स्रोत के बीच कुछ संबंधों का पता लगाना चाहता हूं कि यह परिवर्तन क्यों किया जा रहा है, क्या बदलाव है। जैसे ही हम इनमें से कुछ भजनों को पढ़ेंगे आप देखेंगे कि स्रोत वास्तव में सीधे पेंटाटेच से नहीं हो सकता है, लेकिन भजनकार ने एक अलग पाठ, एक पुरानी परंपरा या किसी अन्य भजन या साहित्य के किसी अन्य टुकड़े से कुछ लिया होगा और उसे बुना होगा और उसका उपयोग अपनी कहानी बताने के लिए किया, क्योंकि यह उसके उद्देश्य के लिए कहीं अधिक उपयुक्त है। तो हम बाइबल के भजनहार की व्याख्या या पुन उपयोग के उस प्रश्न को देखने जा रहे हैं। अधिकांश भाग के लिए मैं अपने उद्धरणों में नस्ब न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल का उपयोग करने जा रहा हूं। मैं यह अभी कहूंगा, मैं अधिकांश भाग के लिए ऐसा कह रहा हूं, लेकिन कई बार मुझे इससे विचलित होने की आवश्यकता होगी, क्योंकि हम पाते हैं और यह कई बार सामने आने वाला है कि कभी कभी अंग्रेजी अनुवादक इसमें थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं। पाठ को अधिक पठनीय बनाने के लिए काव्यात्मकता, इसलिए आप यहां वहां शब्दों में कुछ बदलाव देख सकते हैं। यह कोई आदर्श स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी यह कुछ ऐसा है जो हमारे पास है। इसलिए मैं कुछ पाठों को अपनाने जा रहा हूं और मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि मैं ऐसा कब कर रहा हूं और इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। तो मूलतः हम प्रत्येक भजन को इसी प्रकार देखेंगे। तो अगली चीज जो हमें करनी है वह है निर्गमन को परिभाषित करने का प्रयास करना शुरू करना। हम कौन सी घटनाएं देख रहे हैं? यह सिर्फ एक और सिंहावलोकन है ताकि हम निर्गमन के उन घटकों को समझ सकें जिनके बारे में हम विचार करने जा रहे हैं। पहला यह है कबीले से वादा किए गए देश की ओर कदम। यहां मैं उत्पत्ति की पुस्तक के अंत की बात कर रहा हूं जो निर्गमन की पुस्तक से शुरू होती है, जब यह जैकब और उसका विस्तारित परिवार था जिसे कुल मिलाकर 70 आत्माओं के रूप में वर्णित किया गया है। वे अकाल, कठोर अकाल से बचने के लिए यूसुफ से मिलने के लिए मिस्र गए जो उस समय कनान देश में आया था। तो हमने उन्हें अंदर ले लिया है और वे सिर्फ एक कबीला हैं। फिर वहां से वे स्पष्ट रूप से बहुगुणित हो गए और एक लोग बन गए और तभी वे मिस्र में गुलाम बन गए। एक नया राजा उभरता है जो यूसुफ को नहीं पहचानता और वह उन्हें गुलाम बना लेता है क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है। हम देखते हैं कि यह भी कुछ ऐसा है जो उन कुछ भजनों में प्रतिबिंबित होता है। मूल भाव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा गुलामी से मुक्ति है, विशेषकर विपत्तियों से। आप देखेंगे कि निर्गमन की पुस्तक में 10 विपत्तियों का उल्लेख है जो मिस्रवासियों के पहले जन्मे बच्चे की मृत्यु में परिणत हुई। यह एक बहुत ही सामान्य रूप है, हालांकि विपत्तियां, जैसा कि हम देखेंगे, इन निर्गमन स्तोत्रों में थोड़ा अलग ढंग से प्रस्तुत की गई हैं। हमारे पास चमत्कारी समुद्री पारगमन भी है, जिसकी एक तस्वीर हमारे पास है जिसमें समुद्र विभाजित है। इसके विभिन्न पहलू हैं जिनमें कुछ हद तक विद्रोह होता है क्योंकि लोग मूसा पर उन्हें गुलामी से निकालने, जंगल की शुरुआत में या समुद्र के किनारे मौत की ओर ले जाने का आरोप लगा रहे हैं। इसलिए वहां थोड़ा विद्रोह है, लेकिन तभी भगवान यह चमत्कार करते हैं। यह एक अवधारणा है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि समुद्र को विभाजित करके उन्हें इसे पार करने की अनुमति दी जाए। फिर जंगल में प्रावधानों की कहानी है। पानी की व्यवस्था है। इसमें रोटी मन्ना का प्रावधान है जो एक बहुत लोकप्रिय परंपरा है, और बटेर के साथ मांस का भी प्रावधान है। प्रावधान के साथ साथ जंगल में होने वाला पाप भी है, जैसा कि इसराइली विभिन्न स्तरों पर शिकायत करते हैं। वे मूसा के विरुद्ध शिकायत करते हैं। छोटे समूह मूसा के विरुद्ध शिकायत करते हैं। यहां तक कि उसकी बहन मरियम और हारून भी उसके खिलाफ शिकायत करते हैं। मूसा का यह निरंतर कार्य है कि वह लोगों के लिए मध्यस्थता करे और उनकी जरूरतों को ईश्वर तक पहुंचाए और ईश्वर की जरूरतों को उन तक पहुंचाए। फिर मुझे लगता है कि यह कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो टोरा का दान है, जब मूसा सिनाई पर्वत पर चढ़ते हैं और भगवान अपने लोगों को निर्देश देते हैं कि अगर उन्हें एक अनुबंधित लोग बनना है तो उन्हें कैसे रहना चाहिए। जाहिर है हमारे पास व्यवस्था विवरण जैसी पूरी किताबें हैं जो टोरा की बहुत सारी व्याख्याओं के लिए समर्पित हैं, जैसा कि लेविटिकस 2 में है। इसलिए हम कथा से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कानून देने के कुछ पहलू भी हैं जो घटित होते हैं। फिर यदि हम टोरा में पैटर्न का पालन करते हैं तो हम देखेंगे कि ट्रांसजॉर्डनियन क्षेत्रों की प्रारंभिक विजय भी है। यहाँ हम बाशान के राजा ओग और एमोरियों के राजा सीहोन के क्षेत्रों को देख रहे हैं। इससे पहले कि वे वास्तव में वादा किए गए देश में प्रवेश करें, वह प्रारंभिक विजय है। यदि मैं इसे यहाँ पर शीघ्रता से तैयार करूँ तो आम तौर पर मैं गैलील सागर और मृत सागर के साथ इसराइल राष्ट्र को इसी तरह चित्रित करूंगा। यह जॉर्डन है। यह वह क्षेत्र है जो इसराइल के लिए काफी हद तक चिन्हित किया गया था। व्यवस्था विवरण के अंत में इसराइल इस बिंदु पर आता है, लगभग उसी प्रकार का क्षेत्र। परंतु यहाँ का यह सारा क्षेत्र, जो मूलतः एमोरियों के इसराइलियों को आवंटित नहीं किया गया था, क्योंकि एमोरी, ओग और सीहोन ने इसराइलियों को अपने क्षेत्र से होकर जाने नहीं दिया था। उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया और वे वास्तव में जॉर्डन को पार करके इस भूमि पर आने से पहले एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा करने में सक्षम थे जिसका उनसे वादा किया गया था। तो वे निर्गमन रूपांकन के घटक भाग हैं। जैसे ही हम भजनों को देखते हैं, हम देखेंगे कि ये भाग कैसे प्रतिबिंबित होते हैं और उन्हें अन्य बाइबल परंपराओं में भी कैसे बुना गया है, और उन्हें हिब्रू कविता के ताने बाने में भी कैसे बुना गया है। तो उसने कहा, हम भजन 136 से शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं भजन 136 से शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि यह छोटे भजनों में से एक है। इस परिचय और पहले वीडियो में मेरे पास मौजूद समय सीमा के कारण मुझे इसमें एक छोटा भजन शामिल करना होगा ताकि परिचय को भी इसमें शामिल किया जा सके। तो यह छोटी किताबों में से एक है और यह वास्तविक किताब में आखिरी किताब है। अगला हम भजन 78 करेंगे जो पहला होगा। तो स्तोत्र का एक त्वरित परिचय और हम देखेंगे कि यह मूल रूप से एक धार्मिक भजन है, एक प्रतिध्वनि भजन जिसमें प्रत्येक पंक्ति के बाद कहा गया प्रत्येक छंद उस कहानी को बताता है जिसमें उस तरह का कथानक होता है। हमें वाक्यांश मिलता है कि लेओलम हसदो, हिब्रू वाक्यांश उसके प्यार के लिए, उसके अनुबंधित प्रेम के लिए, उसकी कृपा के लिए, उसकी दया चिरस्थाई है। तो यह एक प्रतिध्वनि भजन है। ऐसा लगता है कि यह एक एंटीफोनल भजन है जिसमें संभवतः इसे सेट किया गया था और मैं इसे फसह के दौरान इसराइल में रहने से जानता हूँ। यह निश्चित रूप से एक भजन है जो हर साल गाया जाता है, जिसमें नेता एक विशेष कविता कहता है और फिर बाकी सभी लोग यह कहकर भाग लेते हैं कि लेओलम हसदो, क्योंकि उसका प्यार शाश्वत है। अभी मैंने यहाँ केवल यह उल्लेख किया है कि प्रतिक्रिया प्रश्न चिन्ह के साथ अजैविक है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि सवाल उठते हैं निश्चित रूप से विद्वता के बीच कि क्या वह माध्यमिक पंक्ति की लेओलम हसदो उसके प्यार के लिए चिरस्थाई है। ऐसे प्रश्न हैं कि क्या यह वास्तव में स्तोत्र का मूल है या क्या इसे एक धार्मिक रचना बनाने के लिए किसी भिन्न कार्य में डाला गया था। यह मानने का एक अपेक्षाकृत अच्छा कारण है कि कुमरान में भजन स्क्रॉल में, उदाहरण के लिए, हमारे पास भजन 145 की एक प्रति है जो एक एंटीफोनल लाइन के साथ मौजूद है जो प्रत्येक कविता के बाद हर समय दिखाई देती है। अब यह वह प्रतिलिपि नहीं है जो हमारे पास मैसोरेटिक पाठ में है, लेकिन यह सुझाव देगा कि कम से कम इसराइलियों, प्रारंभिक इसराइलियों ने किसी स्तर पर कुछ रचनाएं देखी और उन्हें धार्मिक संदर्भ में और अधिक ले जाना चाहते थे। इसलिए वे एक पंक्ति जोड़ेंगे जिसमें श्रोता या प्रतिभागी भी भाग लेने के लिए पाठ कर सकें। तो ऐसी संभावना है कि वह गैर जैविक है। उसके प्यार के लिए, उसके अनुबंधित प्रेम के लिए, उसकी कृपा के लिए, उसकी दया चिरस्थाई है। तो यह एक प्रतिध्वनि भजन है। इसका एक और कारण है, और जब हम भजन 135 को देखेंगे तो हम उसे देखेंगे। इसलिए मैं तब तक उस पर रोक लगाऊंगा। लगभग 13 छंद हैं जो 10 से 22 तक निर्गमन से संबंधित हैं। हम बस एक क्षण में उन्हें देखने जा रहे हैं। हमें यह भी ध्यान देना होगा कि अब मेरे लिए क्या ध्यान देने योग्य है, क्योंकि तुलना उल्लेखनीय है। तथ्य यह है कि हमारे पास भजन 135 भी है और यह 136 के बाद भी आता है। हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि 110 स्तोत्र के बीच किसी प्रकार का आकर्षण प्रतीत होता है जो स्तोत्र के व्यवस्थापकों या संगीतकारों या स्तोत्र के संपादकों और संपादकों की संपादकीय गतिविधि के बारे में कुछ कहता है, लेकिन हम इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। इस भजन में जो कुछ हम देखते हैं या एक पहलू जो हम देखते हैं या हमें ध्यान देना चाहिए वह यह है कि भगवान को एक योद्धा के रूप में चित्रित किया गया है। वह ऐसा व्यक्ति है जो इसराइल के लिए लड़ता है और यही मुख्य जोर लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यही कारण है कि इस भजनहार ने निर्गमन के कुछ तत्वों को पकड़ लिया है या अपना लिया है। निर्गमन एक ज्ञात कहानी थी, हर कोई इसे जानता था और यह कई अलग अलग चीजें बता सकता है। आप इससे कई बातें हासिल कर सकते हैं या साबित भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस विशेष लेखक ने ईश्वर के विचार को एक योद्धा के रूप में पकड़ लिया है। कोई ऐसा व्यक्ति जो लड़ता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो इसराइल का राजा है और अन्य राजाओं के साथ युद्ध करता है। हम इसे बस एक क्षण में देखेंगे। तो आइए भजन की संरचना पर ही नजर डालें। इसकी शुरुआत प्रारंभिक स्तुति और आराधना से होती है, जिससे अधिकांश भजन शुरू होते हैं। भले ही निर्गमन स्तोत्र, यदि उनका प्रशंसा से कोई लेना देना है, तो आपको एक परिचयात्मक भाग मिलेगा जो दर्शकों को गीत की भावना, प्रशंसा और पूजा की भावना में लाएगा। तो हमारे पास वह श्लोक 1-3 तक है। फिर हमारे पास 4-9 तक सृष्टि में ईश्वर का कार्य है। जब हम इसके बारे में अधिक विस्तार से जानेंगे तो हम इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, लेकिन सृजन का जो विचार हमें सोचना है वह केवल सृजन के प्रारंभिक कार्य से कहीं अधिक है, बल्कि यह दुनिया को बनाए रखने और बनाए रखने के बारे में भी है। हम उस पर थोड़ी देर बाद आएंगे। फिर हमारे पास निर्गमन में परमेश्वर का कार्य है। दो मुख्य पहलू हैं, मिस्र से मुक्ति और फिर ट्रांसजॉर्डनियन राजाओं की हार। वे दो प्राथमिक पहलू हैं जिन पर भजनकार अपना ध्यान केंद्रित करता है। फिर हमें एक प्रशंसा सारांश मिला है जो परमेश्वर के उद्धार का सार प्रस्तुत करता है। हम इस बारे में बात करेंगे कि आखिर इसका संबंध किससे है, लेकिन अभी आइए जारी रखें और देखें, आइए इनमें से प्रत्येक खंड को लें या इनमें से कुछ खंडों का एक हिस्सा लें और उनके बारे में थोड़ा और बात करें। मैं सभी श्लोक नहीं पढ़ूंगा, वे आपके देखने के लिए वहां मौजूद रहेंगे, लेकिन मैंने इसके कुछ हिस्सों पर प्रकाश डाला है। यह वाक्यांश हिब्रू में होडुला को धन्यवाद देता है। होडुला अडोनाई एक वाक्यांश है जो तीन छंदों में से प्रत्येक की शुरुआत में दोहराया जाता है। इससे इसे व्यवस्थित करने में मदद मिलती है और इससे हमें यह बताने में मदद मिलती है कि इसे एक विशेष खंड के रूप में देखा जाना चाहिए। हमारे पास हेस्ट का विचार है जिसे पेश किया गया है, हिब्रू शब्द जिसे पेश किया गया है कि लेओलम हसदो। यहाँ हमारे पास हिब्रू शब्द हेस्ट है जिसे मैं यहाँ रखूंगा, क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है कि इसकी व्याख्या कैसे की जाती है। एच एसीड हिब्रू में कुछ इस तरह, अगर मैं भी लिखूं तो मुझे लगता है कि यह अंग्रेजी में कुछ कुछ वैसा ही दिखता है। यह एक ऐसा शब्द है जिसे एक बार में समझाना कठिन है, लेकिन इसका संबंध शालीनता से है, इसका संबंध दया से है, इसका संबंध कुछ संदर्भों में अनुबंधित प्रेम से है, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी संदर्भों में। मुझे आश्चर्य है कि क्या अनुग्रह शायद उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा वाक्यांश है, लेकिन यहाँ तक कि वे वाक्यांश या शब्द भी इस शब्द के साथ पूरी तरह से न्याय नहीं करते हैं। हमें यह मिलता है कि लेओलम हसदो, यह दोहराया गया है। तथ्य यह है कि इसे दोहराया जाता है, यह उसी अर्थ में एक प्रतिध्वनि की तरह है कि भगवान की दया शाश्वत है। तो हम इसे इसी चिरस्थाई अंदाज में भी दोहराते रहते हैं। तो यह तथ्य कि इसे दोहराया जाता है ईश्वर के शाश्वत अनुबंधित प्रेम के विचार को दर्शाता है। इसमें कुछ योग्यताएं हैं जिनके बारे में हम बस एक क्षण में पता लगाएंगे। हम भी यहां हैं, देवताओं के परमेश्वर को धन्यवाद दें। फिर हमारे पास हिब्रू में यह वाक्यांश एलोही एलोहिम है। एलोहिम इन प्रमुख घटकों में से एक है। मैं जानता हूं कि यह हिब्रू वर्ग नहीं है, लेकिन आपको इन शब्दों के बारे में बात करनी होगी। यह एक शब्द है भगवान के लिए, एक सामान्य शब्द। यह एलोहिम इस तरह होगा, कुछ इस तरह लिखा जाएगा, कुछ इस तरह उच्चारित किया जाएगा। यह एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग इज़राइल के ईश्वर का वर्णन करने के लिए अक्सर किया जाता है, लेकिन बहुत से लोगों को यह भी एहसास नहीं है कि यह एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग अन्य देवताओं का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है। प्राचीन निकट पूर्व में इसराइलियों के बीच भी ईश्वर का विचार था, लेकिन अन्य देवताओं, देवदूत प्रकार की आकृतियों और दिव्य प्राणियों का विचार भी बहुत प्रमुख था। इसलिए वे इन अन्य देवताओं के साथ साथ इज़राइल के भगवान का वर्णन करने के लिए कुछ संदर्भों में इस एलोहिम शब्द का उपयोग करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण विचार है। यह केवल तभी होता है जब हम भगवान का नाम टेट्राग्रामटन युधे वावहे देखते हैं कि हम निश्चित रूप से जानते हैं 100% कि हम इसराइलियों के भगवान के साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो यहाँ हमें देवताओं के परमेश्वर को धन्यवाद देना है जो लगभग यह सुझाव देने जैसा है कि उन्हें यह मान्यता थी कि परमेश्वर इसराइल का परमेश्वर किसी भी अन्य देवता से ऊपर था। अब क्या वह था? क्या उन्होंने पहचाना कि यह भगवान था? क्या उन्होंने सोचा कि यह स्वर्गदूत थे? यह एक अलग कहानी है। हमें उन्हें अलग अलग संदर्भों में देखना होगा, लेकिन फिर भी अन्य प्राणियों के साथ साथ इज़राइल के ईश्वर की भी कुछ प्रकार की मान्यता थी। मेरा मानना है कि यहाँ एक संकेत है, एक बाइबल संकेत है जो व्यवस्था विवरण तक जाता है। तो हमारे पास एलोहिम का यह विचार है जिसका अर्थ है इज़राइल के ईश्वर के अलावा किसी अन्य ईश्वर का वर्णन करना। अब व्यवस्था विवरण 10:17 और भजनहार के बीच संभावित संकेत है जो मैं यहाँ कह रहा था। यह उस चीज का विचार प्रस्तुत करेगा जो बाइबल साहित्य में बहुत अधिक मात्रा में घटित होती है, जिसमें ऐसा बहुत कम होता है। मैं कहता हूँ कि बहुत ही कम। फिर से यह मेरा अंग्रेजी रिजर्व है। बाइबल में ऐसी कोई किताब नहीं है जो कभी अपने आप अस्तित्व में हो। हमारी अक्सर यह धारणा होती है कि बाइबल की किताबें इसी तरह मौजूद होती हैं। कई मायनों में हमें धर्म ग्रंथों की पुस्तकों और अनुभागों को इस तरह पढ़ना सिखाया गया है जैसे कि वे पूरी तरह से अलग से लिखी गई स्वतंत्र इकाइयों के रूप में मौजूद हों। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। बाइबल की सभी किताबों में हमेशा, मेरा मतलब है कि बाइबल की हर किताब में कनेक्शन का एक बहुत ही जटिल नेटवर्क होता है जिसमें बाइबल के लेखक या तो अवचेतन रूप से या जानबूझकर बाइबल के अन्य ग्रंथों से प्रभावित होते थे। वे विभिन्न स्थानों से वाक्यांश उधार लेते थे और वे उन वाक्यांशों को अपने विशेष पाठ में लाते थे। ऐसा हर समय होता है। यह एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे हमें संपूर्ण पवित्र शास्त्र को देखना चाहिए, न कि केवल इन निर्गमन भजनों को। मैं नए टेस्टामेंट के साथ साथ पुराने टेस्टामेंट के बारे में भी बात कर रहा हूँ। हमें यह समझना होगा कि लोग धर्म ग्रंथ में डूबे हुए थे। वे छंदों, शब्दों और वाक्यांशों को हर समय जानते थे और वे उसे अपने ग्रंथों में शामिल कर रहे थे। तो यहाँ व्यवस्था विवरण में इसका केवल एक उदाहरण है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा देवताओं का परमेश्वर और प्रभुओं का परमेश्वर है, महान पराक्रमी और भययोग्य परमेश्वर है जो पक्षपात नहीं करता और न रिश्वत लेता है। क्योंकि यह विशेष शब्दांकन इन दो स्थानों के लिए काफी अनोखा है, यह उन संकेतों में से एक है कि इसमें शास्त्र उधार लेने की उच्च संभावना है जिसमें लेखक जानबूझकर या अनजाने में कुछ जानता है और वह इसे अपने काम में खींच रहा है। तो फिर हमारे पास श्लोक 4-9 तक सृष्टि में ईश्वर का कार्य है। हम परमेश्वर के महान चमत्कारों, उसके महान चमत्कारों के बारे में बात करते हैं। यह एक और दिलचस्प विचार है क्योंकि हमें इस विचार या चमत्कारों की भाषा से परिचित कराया गया है। हिब्रू में इस तरह एक रूट पेले है। मैं इसे बस ऐसे ही एक रूट के रूप में लिखूंगा। यह शब्द पेले मुझे संभवतः अंग्रेजी में भी लिखना चाहिए, है ना? यह शब्द पेले एक ऐसी अवधारणा है जो किसी ऐसी चीज का वर्णन करती है जो लोगों के लिए बहुत कठिन है। पूर्वजों ने व्यक्तियों की नौकरियों, कार्यों और कार्यों को अलग कर दिया था। तो आपके पास वह काम होगा जो एक आदमी कर सकता है, जैसे एक आदमी एक पेड़ काट सकता है, एक आदमी एक घर बना सकता है। ये चीजें मनुष्य के दायरे में हैं। लेकिन जब बात उससे आगे निकल जाती है तो हमारे सामने निफ्लोट की अवधारणा आती है। दुर्भाग्य से ये अत्यधिक हैं, लेकिन ये ऐसे शब्द हैं जो उस चीज का वर्णन करते हैं जिसे हम चमत्कारों, चमत्कारों के विचारों के रूप में जानते हैं। प्राचीन दुनिया में चमत्कार ऐसी चीजें थीं जो केवल भगवान ही कर सकते थे, ऐसी चीजें जो मूल रूप से मनुष्य के लिए बहुत कठिन थीं। तो यहाँ यह शब्द निफ्लाउट और यह दूसरा शब्द गेडोलोट भी है। जब हम इन शब्दों को पेले शब्द में देखते हैं तो हम अनिवार्य रूप से चमत्कारों के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसी चीजें जो केवल भगवान ही कर सकते हैं। फिर मुझे इस बारे में बस थोड़ी सी बात करने की जरूरत है, क्योंकि जब हम चमत्कार की इस अवधारणा से निपट रहे हैं तो पूर्वजों के पास चमत्कार क्या है इसके बारे में आज हम जो सोचते हैं उससे बहुत अलग विचार रखते हैं। मेरा मानना है कि आज हम तीन स्तरों के आधार पर सोचते हैं। हम इस संदर्भ में सोचते हैं कि पुरुष क्या कर सकते हैं, लोग क्या कर सकते हैं या लोग क्या करते हैं। लोग घर बना सकते हैं और लोग पेड़ काट सकते हैं। लेकिन समकालीन समाज में हमारे पास एक और परत है जिसे प्रकृति माँ के रूप में वर्णित किया जा सकता है। फिर हम उन चीजों को देखते हैं जिनका प्रकृति ध्यान रखती है, जैसे उपचार। यदि हमें कोई कट या खरोंच लग जाए तो हम ठीक हो जाते हैं। यह नीचे आता है और इसका श्रेय प्रकृति को दिया जाता है, वह प्राकृतिक प्रक्रिया जिसमें हम ठीक होते हैं। तब हमारे मन में एक दूर के ईश्वर का विचार आता है जो कभी कभी अंदर आता है और हम इसे एक चमत्कार के रूप में सोचते हैं जब ईश्वर उसके ऊपर कुछ करने के लिए आता है। लेकिन बाइबल के दिनों में केवल दो परतें थीं। एक रचिता का विचार था और रचा गया। इसलिए जो कुछ हम नहीं कर सके उसका श्रेय ईश्वर को दिया जाता है जो अपनी रचना को बनाए रखता है। वह इसे सिर्फ करता ही नहीं है बल्कि वह इसे कायम भी रखता है। इसलिए यदि हम स्वयं को काटते हैं और ठीक हो जाते हैं तो यह प्रकृति नहीं है बल्कि ईश्वर है जो हमें ठीक करता है, क्योंकि हम स्वयं ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें यह ध्यान में रखना होगा कि प्राचीन लोग इसी बारे में सोचते थे। प्रकृति की कोई अवधारणा नहीं थी। वास्तव में जब मैंने वास्तव में एक बार अपने सलाहकार से इसका उल्लेख किया तो वह अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और उसने मेरी ओर देखा और कहा, प्रकृति, बाइबल की दुनिया में प्रकृति जैसी कोई चीज नहीं है। तो जब हम सोचते हैं, जब हम यह शब्द पढ़ते हैं, निफ्लाहोट गेडोलोट, तो हम इसे चमत्कार के रूप में अनुवादित देखते हैं। इसका अनुवाद किया जा सकता है, मुझे नहीं पता, संकेतों के साथ। हमें उन कठिन कार्यों के बारे में सोचने की जरूरत है जिन्हें वास्तव में केवल ईश्वर ही कर सकता है। ये बाइबल आधारित हैं, यह बाइबल आधारित चमत्कारिक भाषा है। इससे भी अधिक हम पाएंगे कि शब्द पेले और यह शब्द निफ्लाहोट अक्सर निर्गमन और निर्गमन काल के दौरान हुए चमत्कारों के लिए निर्दिष्ट किया गया है। आधुनिक हिब्रू में वे चमत्कार के लिए एक अलग शब्द का उपयोग करते हैं। वे नेस शब्द का उपयोग करते हैं जो एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ बैनर होता है। इसमें अलौकिक नहीं बल्कि बाइबल के संदर्भ में शानदार जैसा कुछ भी शब्द नहीं है। लेकिन यह शायद थोड़ी अलग कहानी है। हम यहाँ पाते हैं कि इस विशेष भजनहार कार्य में अपनाया जा रहा पैटर्न सामान्य से विशिष्ट है, जिसमें वह सबसे पहले एक सामान्य सिद्धांत का उल्लेख करता है और फिर वह विस्तार से बताता है कि उसका वास्तव में क्या मतलब है। क्योंकि तुम यहाँ आ गए हो, चलो यहाँ ले चलें, यह कहता है, केवल उसी के पास जो महान चमत्कार करता है। फिर उसके बाद वह जाकर बताता है कि वास्तव में ये चमत्कार क्या हैं। तो आपको यह सामान्य से लेकर एक विशिष्ट पैटर्न मिल गया है जो हमें सभी भजनों में नहीं मिलता है। यहाँ एक प्रश्न है, और जब भी मैं यहाँ अपने किसी वक्तव्य द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ तो संभवतः इसके बारे में कुछ हद तक बहस होती है। लेकिन यहाँ एक संभावित ज्ञान प्रभाव है, क्योंकि हमारे पास वह है जो पृथ्वी पर फैला हुआ है। हम कहाँ हैं? उसके लिए जिसने स्वर्ग को कुशलता से बनाया। यहाँ कौशल के साथ स्वर्ग प्राप्त है। इस शब्द कौशल की एक जड़ है, वह है तेवुनाह बिना, जिसका अन्यत्र अनुवाद समझ के रूप में किया जाता है। तो यह फिर से उस प्रकार की चीज है जिसे हम बाइबल के अनुवादों में अच्छी तरह से प्रतिबिंबित नहीं देखते हैं। मैं देख सकता हूं कि अनुवादक ने कौशल शब्द का उपयोग क्यों किया, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या समझ का विचार, जो ईश्वर द्वारा ज्ञान के साथ दुनिया बनाने की धारणा का परिचय देता है। यह परंपरा है कि संसार की रचना में बुद्धि ईश्वर के पास मौजूद थी। तो हम इसे यहाँ प्रतिबिंबित होते देखना शुरू करते हैं। निश्चित रूप से हिब्रू में, भले ही यह अंग्रेजी अनुवाद में इतना स्पष्ट न हो, तो हमारे यहाँ भी एक विशेष उल्लेख है, सूर्य और चंद्रमा के बारे में एक और बात। यह कुछ ऐसा है जो वास्तव में ज्यादा हलचल पैदा नहीं करता है। ठीक है, हम समझते हैं कि सूर्य और चंद्रमा का निर्माण किया गया था, लेकिन हिब्रू पाठ के संबंध में हम पाते हैं कि भजनकार को स्पष्ट होने की आवश्यकता है, क्योंकि उत्पत्ति पाठ में दुनिया के निर्माण पर सूर्य और चंद्रमा का कभी भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। उत्पत्ति पाठ में हमारे पास केवल यह है कि बड़ी रोशनियां बनाई जा रही हैं और छोटी रोशनियां बनाई जा रही हैं। अब इसके कुछ कारण हैं जिन पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन यहां भजनहार संभवतः उत्पत्ति पाठ से विशिष्ट होना चाहता है और कहना चाहता है, नहीं, सूर्य और चंद्रमा उस विशेष समय में बनाए गए थे। तो यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि निर्गमन में क्या चल रहा था। फिर हमारे पास निर्गमन में परमेश्वर के कार्य से संबंधित अनुभाग है। पहली चीज जो हम देखते हैं वह मिस्रवासियों के पहलौठे बच्चे पर ईश्वर द्वारा प्रहार करने का उल्लेख है। इससे कोरस में हमारा प्रश्न उठता है, क्योंकि उसका प्रेम चिरस्थाई है। लेकिन जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें यह समझना होगा कि भजनहार का क्या मतलब है। हाँ, वह इसलिए कह रहा है कि उसका प्रेम चिरस्थाई है, लेकिन वास्तव में भजनहार इसलिए कह रहा है कि इसराइल के प्रति उसकी दया चिरस्थाई है। क्योंकि यदि आप उस समय मिस्रवासी थे और आपके पहलौठे बच्चे पर आघात हुआ था, तो आखिरी बात जो आप सोचेंगे वह यह है कि उसका प्यार चिरस्थाई है। हाँ, यह है, लेकिन हमारे लिए नहीं, क्योंकि हम इसके तहत पीड़ित हैं। तो यह एक स्वर है। यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, लेकिन यह इस विशेष भजन में स्पष्ट रूप से निहित है। हमने मिस्रियों को हराया है और हमने समुद्र को भी विभाजित कर दिया है। यहाँ शब्द थोड़ा अजीब है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि वह समुद्र को विभाजित करता है। एलेक्सोआर बेक्सारिम वह अभिव्यक्ति है जिसका उपयोग किया जाता है। ईश्वर द्वारा समुद्र के विभाजन का वर्णन करने के लिए निर्गमन स्तोत्र में यह कहीं और नहीं पाया जाता है। तो फिर भजनहार ने ऐसे अजीब शब्द क्यों चुने? हो सकता है कि उसने उन्हें सिर्फ इसलिए चुना हो क्योंकि वे उसके दिमाग में आए थे, लेकिन हो सकता है कि उसने उन्हें उत्पत्ति 15:17 में इस पाठ के प्रभाव में भी चुना हो, जो टुकड़ों के बीच मशाल की कहानी है, जहां इब्राहिम भगवान को यह बलिदान देता है। और ऐसा तब हुआ जब सूर्य अस्त हो गया, बहुत अंधेरा हो गया, और क्या देखा कि एक धूता हुआ तंदूर और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी, जो इन टुकड़ों के बीच से गुजर रही थी। यदि आप उस पाठ में जाते हैं, आप उस पाठ को देखते हैं, तो आप देखेंगे कि यह एक ऐसा पाठ है जिसके बारे में बहुत से लोग मानते हैं कि यह एक ऐसा पाठ है जो निर्गमन की भविष्यवाणी करता है। यह इसराइलियों के बारे में भविष्यवाणी करता है कि समुद्र दो भागों में बंट गया है और वे आग के खंभे के पीछे चल रहे हैं जो उनके आगे आगे चलता है और उन्हें उसमें से होकर ले जाता है। आप उत्पत्ति 15 में भी देखेंगे, जब आप आगे पढ़ेंगे, उस समय इब्राहिम के पूर्वजों का क्या होगा, इसकी भविष्यवाणी का वास्तव में उल्लेख किया गया है। तो हमें यह पाठ मिला है जो एक संभावित है, मैं एक संभावित भ्रम कहने जा रहा हूँ। या अगर मुझे जुआ खेलना होता तो जाहिर तौर पर मैं जुआ खेलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे जुआ खेलना होता तो मैं कहूंगा कि उत्पत्ति में यह पाठ उनके विचारों को प्रभावित कर रहा था जब उन्होंने इस विशेष पाठ को लिखा था, जब उन्होंने इस भजन को लिखा था। यहां विपत्तियां केवल मोटे तौर पर संक्षिप्त रूप में दी गई हैं। जैसा कि मैंने कहा, हमारे पास पहला बच्चा है, यह सबसे लोकप्रिय है जिसे चुना गया है, और उसके बाद अन्य का उल्लेख किया गया है, लेकिन संक्षिप्त रूप से बताया गया है और वे विशेष रूप से बिल्कुल भी विस्तृत नहीं हैं। लेकिन हमारे पास फिरौन के विनाश का विशिष्ट उल्लेख है। तो यहाँ जब आप इस पाठ को पढ़ते हैं, तब भी जोर ईश्वर द्वारा फिरौन को मारने और फिरौन पर हमला करने पर अधिक लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सबसे बड़ा जोर है, और जब हम अन्य भजनों का अध्ययन करेंगे तो हम इसे देखेंगे। यह मुक्ति या ईश्वर द्वारा किए जाने वाले किसी भी अन्य कार्य से कहीं अधिक उस पर है। यह इस विशेष राजा के हमले और विनाश के बारे में है, और हम देखेंगे कि इस विशेष स्तोत्र में अन्यत्र इसकी प्रतिध्वनि है। तो हमारे पास निर्गमन के बाद अगला भाग है। भगवान फिर अपने लोगों को ले जाते हैं और रेगिस्तान की घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं। फिर वह अपने लोगों को रेगिस्तान के रास्ते ले जाता है। तो यहाँ हम जंगल के युग के रेगिस्तान में घूमने के 40 वर्षों को छोड़ रहे हैं। हम विशेष रूप से ट्रांसजॉर्डन राजाओं की ओर बढ़ते हैं, जहाँ भगवान दो राजाओं ओग और सीहोन को नष्ट कर देते हैं। उनका उल्लेख किया गया है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, इस संक्षिप्त अंश में जोर इसराइलियों की अवज्ञा पर नहीं है, बल्कि यह एक राजा के रूप में लड़ते हुए लगभग अन्य राजाओं की तुलना में भगवान के विनाश पर है। परमेश्वर ने फिरौन को हरा दिया, उसने ओग को हरा दिया और उसने सीहोन को हरा दिया। वह उनका योद्धा था। रेगिस्तान काल में वह उनका राजा था। इसराइलियों की यही धारणा थी कि इस समय परमेश्वर उनका राजा था। एक सवाल उठता है, ट्रांसजॉर्डनियन विजय पर क्यों रोकें? हम और आगे क्यों नहीं गए? भूमि की प्रारंभिक विजय की तरह और समकालीन विद्वता में इसका सबसे लोकप्रिय कारण यह है कि भजनकार मुख्य रूप से टोरा मूसा की पहली 5 पुस्तकों के साथ काम कर रहा था, और जहां तक यह जाता है, संख्याओं का अंत व्यवस्था विवरण की शुरुआत केवल ट्रांसजॉर्डनियन विजय पर रुकती है और इससे आगे नहीं बढ़ती है। तो इससे यह विचार सामने आ सकता है कि भजनहार के समय टोरा किसी तरह एक संग्रह था। मैं प्रेरित होकर कहना चाहता हूँ, लेकिन यह थोड़ा कालानुक्रमिक है, लेकिन इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था और उस समय पुस्तकों के संग्रह के रूप में देखा जाता था। फिर हम भूमि के वितरण की ओर बढ़ते हैं। यह जो पैटर्न हम यहाँ देखते हैं, यह एक काव्यात्मक पैटर्न है। यह एक सशक्त संरचना है। इसे सीढ़ीदार पैटर्न कहा जाता है। मैं बस इसे चिह्नित करने जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि यह कोई कविता पाठ्यक्रम नहीं है, लेकिन इसे एक BBC के रूप में योजनाबद्ध किया गया है, जहां इस बी तत्व को जोर देने के लिए दोहराया जाता है। तो इस विशेष मामले में हम देखते हैं और अपनी भूमि को विरासत के रूप में देते हैं। तब हमारे पास उसके दास इसराइल के लिए एक विरासत फिर से दोहराई गई है। तो हमें मिल गया है और उसने अपनी जमीन दी है, इसका एक हिस्सा होगा। एक विरासत भी होगी जो दो बार दोहराई जाती है। फिर हमें यहीं उसके सेवक इसराइल सी के पास जाना है। तथ्य यह है कि यह है क्योंकि उसकी प्रेम कृपा चिरस्थाई है, बीच में डाला गया है। यह एक प्रकार से सीढ़ीदार पैटर्न को नष्ट कर देता है। यह कई लोगों के लिए यह मानने का एक और कारण है कि यह कोरस पंक्ति वास्तव में भजन में बाद में जोड़ी गई है, क्योंकि यह कविता को तोड़ देती है और यह उतनी अच्छी तरह से नहीं पढ़ी जाती है। लेकिन किसी भी स्थिति में यही वह पाठ है जो हमारे सामने है। फिर हमारे पास परमेश्वर की मुक्ति की स्तुति का सारांश है। स्तोत्र को समाप्त करने के लिए समय सीमा निर्धारित करना कठिन है। यह ईश्वर द्वारा इसराइल को उनकी तुच्छ संपत्ति में याद करने के बारे में बताता है। लेकिन हम वास्तव में नहीं जानते क्या यह बात हो रही है, क्या यह निर्गमन का संदर्भ है जब उसने दासों को मिस्र से छुड़ाया था? या क्या यह वास्तव में किसी ऐसी चीज का संदर्भ है जिससे इसराइलिया भजनहार गुजरे थे, जैसे कि 587 में निर्वासन? इसलिए निश्चित रूप से यह निर्धारित करना मुश्किल है कि इनमें से कौन सा या शायद यह विशेष रूप से संदिग्ध तरीके से लिखा गया था कि इनमें से किसी एक परिदृश्य को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। हमारे पास फिर से यह शब्द है धन्यवाद दें ओडुले, जो यहाँ दिखाई देता है। जैसा कि आपको याद है, जैसा कि मैंने भजन की शुरुआत में कहा था, हमें उस वाक्यांश का 3 बार इस्तेमाल हुआ है। तो यह भजन के लिए एक तरह का समावेश बनाता है और यह हमें शुरुआत की याद दिलाता है। लेकिन हम उस अवधारणा के बारे में बाद में बात करेंगे। तुलनात्मक रूप से मैंने इसका पहले भी उल्लेख किया था। तो चलिए अब मैं इसके बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्गमन स्तोत्रों का आकर्षण है। भजन 77, जिसमें कुछ निर्गमन सामग्री शामिल है, भजन 78 के बगल में दिखाई देता है। भजन 105, जो फिर से निर्गमन पर हावी है, भजन 106 के ठीक बगल में दिखाई देता है। यहां हमारे पास भजन 135 है, जो हमारे भजन से पहले है। हमने अभी 136 को देखा है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी व्यवस्थाकर्ता द्वारा चीजों को एक साथ समूहित करने के लिए किसी प्रकार का संज्ञानात्मक प्रयास किया गया है। हम जानते हैं कि बाइबल साहित्य में यह बात अन्यत्र भी सच है। इसे एसोसिएशन का सिद्धांत कहा जाता है, जिसके बारे में मैं बात करता हूं, मैं अपने शोध प्रबंध और अन्य मंचों पर चर्चा करता हूं। समय की कमी के कारण मैं अभी इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन स्तोत्र की सामग्री एक निश्चित स्थान पर यह तय करती है कि कौन से स्तोत्र एक दूसरे के बगल में रखे गए हैं। वे पूरी तरह से बेतरतीब ढंग से एक साथ नहीं फेंके गए हैं। तो यह सिर्फ मेरा प्रश्न था। यह स्थिति कैसे बनी? 2 विचार, एक यह कि यह यादृच्छिक और संयोग है। मैं नहीं जानता कि कितने लोग इस प्रकार की चीजों के बारे में सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग बस यही सोचते हैं कि उन्हें यादृच्छिक रूप से एक साथ रखा गया था। लेकिन मैं तर्क दूंगा कि संपादकीय गतिविधि है और स्तोत्र के संपादकों को प्रत्येक स्तोत्र की सामग्री, उसके भीतर के कीवर्ड कैसे समाप्त होता है, कैसे शुरू होता है, जब वे चीजों को एक साथ रखते हैं के बारे में जानते थे। यह यहाँ और अन्यत्र भी स्पष्ट है, हालांकि हम अभी उस पर विचार नहीं करेंगे। तो संक्षेप में हम इस पहले भजन भजन 136 के बारे में क्या कह सकते हैं जिसे हमने देखा है। सबसे पहले यह निर्गमन का विचार ले रहा है और इसका उपयोग भगवान को एक योद्धा या योद्धा राजा के रूप में वर्णित या चित्रित करने के लिए कर रहा है। दूसरी बात यह है कि इसका एक धार्मिक उद्देश्य है। तो इसे ले लिया गया है, यह कुछ ऐसा है जो जानबूझकर किया गया था, इसकी एक सेटिंग थी, एक बहुत ही विशेष सेटिंग। पूरी संभावना है कि यह फसह था, मैं इसकी कसम नहीं खाना चाहता, लेकिन पूरी संभावना है कि यह फसह होता, लेकिन यह एक बड़े समारोह के हिस्से के रूप में काम करता। इस स्तोत्र में इज़राइल पूरी तरह से निष्क्रिय है, वे कुछ नहीं करते, वे कोई निर्णय नहीं लेते, वे विद्रोह नहीं करते, वे नहीं सोचते, वे केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा वितरित किए जाने के लिए हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन इस विशेष स्तोत्र में ऐसा है। भजनहार ने परमेश्वर के लोगों को चित्रित करने का यही तरीका चुना है। इसकी कमी थी, जहां तक निर्गमन का सवाल है, प्रत्यक्ष संकेतों के रास्ते में बहुत कुछ नहीं था। हम यह देखने जा रहे हैं कि यह बाद में कैसे बदलता है, जहां भजन में कई और स्थान होंगे जहां हम कह सकते हैं हाँ, वह इस विशेष स्थान को पूरी संभावना में देख रहा है या नहीं, वह नहीं है, या वह इस विशेष स्थान का सारांश दे रहा है। हमारे पास इतना कुछ नहीं था। भजनकार निर्गमन की घटनाओं के संदर्भ में अधिक सामान्य प्रतीत होता है। फिर हमारे सामने कालानुक्रमिक क्रम का प्रश्न है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ है, जहां पहले पहलौठे का उल्लेख किया गया था और फिर सभी विपत्तियों का उपयोग इसराइल को मुक्ति दिलाने के लिए किया गया था। तो ये इसका एक छोटा सा उदाहरण है। हम और बाद में देखेंगे, लेकिन यह इस विचार या धारणा का परिचय देता है कि भले ही हमारे पास भजनहार के लिए घटनाओं के एक निर्धारित अनुक्रम के रूप में निर्गमन है, कुछ सिखाना या कविता बनाना अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए कालानुक्रमिक क्रम बहुत कम महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम कुछ अन्य भजनों में भी इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। फिर प्रेम कृपा की योग्यता का प्रश्न है। भले ही भजनकार की लेओलम हसदो के इस विचार को दोहराता है, क्योंकि उसका प्यार शाश्वत है, प्रेम कृपा का विचार वास्तव में इसराइल की ओर केंद्रित है। भजनहार का वास्तव में मतलब यह है, क्योंकि उसका प्रेम इसराइल या उसके लोगों के प्रति अनंत है। तो यह भजन का सारांश है। यह पहला भजन है जिसे हमने पूरा कर लिया है। अगला भजन जिसे हम देखने जा रहे हैं वह भजन 78 है। यह निर्गमन भजन पर अपने उपदेश में डॉक्टर डेविड एमानुएल हैं। यह सत्र संख्या 1 परिचय भजन 136 एंटीफोनल लिटुर्जी है।